नहमया अध्याय दो। तो इससे पहले मेरे सामने कभी उदास नहीं हुआ, क्या परेशानी है? और नहमया ने अपना दिल खोला। राजा ने उसकी मनोदशा को समझते हुए कहा, ये तो मन ही की उदासी है, क्या परेशानी है? इसलिए नहमया ने उत्तर दिया, अध्याय दो पद दो, राजा सदा जीवित रहे। तब उसने राजा को अपने उन देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताया जो लोग बंधुआई से मुक्त होकर यरूशलेम पहुंचे थे, और वहां का समाचार जो उसे दिया गया था, और उसने अपने मन का बोझ भी सुनाया जो प्रिय शहर यरूशलेम के लिए था। इसलिए उसने कहा, अध्याय दो पद चार, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। वो राजा से बात करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है। मैंने स्वर के परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा से कहा, यदि राजा की आज्ञा हो तो कुछ समय के लिए मैं यरूशलेम जाकर देखूं, यदि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। राजा ने पूछा, तू कितने समय तक वहां रहेगा? राजा ने उसके लौटने का समय नियुक्त किया और महानद के पार के अधिपतियों के नाम अधिकार पत्र दिए और उसे राज्यपाल बनाकर यरूशलेम वापस भेज दिया। 12 वर्षों का समय बीत गया था जब वो वापस आया था, इसलिए राजा ने उसे आज्ञा दी कि वो उसके अधिकार और आज्ञा के अनुसार वापस जाकर यरूशलेम पुनर्स्थापित करें। ये इतिहास में एक मुख्य तिथि है जब राजा ने नहमया को यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और बनाने की आज्ञा दी, क्योंकि दानियल के 9वें अध्याय के 24 और 25 पद में कहा गया है कि इसराइल के लोगों और नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और यरूशलेम के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन की आज्ञा के दिए जाने से मसीह के आने तक 7 के 7 गुना और 62 सप्ताह गुना 7 या 483 वर्ष 14 मार्च 445 ईसा पूर्व में यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकली। संसार के इतिहास में सबसे मुख्य तिथि, क्योंकि इस तिथि से मसीह के आने की तिथि पता की जा सकती है। अतः यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकाली गई। परमेश्वर के वचन में की गई भविष्यवाणी के अनुसार 483 वर्षों बाद 6 अप्रैल 32 ईस्वी में यीशु ने यरूशलेम नगर में विजय प्रवेश किया था। बाबुल 1 वर्ष 360 दिन का होता था। दानियल कहता है, दानियल 9 अध्याय 26 पद, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और लोग तितर बितर हो जाएंगे। दानियल की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी। उसी दिन मसीह आया, वो बिना राज्य प्राप्त किया काटा गया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया और यहूदी तितर बितर हो गए। इसलिए ये इतिहास की एक मुख्य तिथि है। अध्याय दो पद आठ, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती ग्रहण कर ली। वो कुछ सेनापति और सवारों के साथ जो फारस की सेना के थे वहां आया, जहां होरोनी संबलत और तोबिया जो अमोनी थे उपस्थित थे, और उन दोनों को बहुत बुरा लगा। होरोनी मुआब के होरोन का था और वे तुरंत नहमया के विरुद्ध में आए, क्योंकि उसने यहूदियों की सहायता करना चाही। दूसरे शब्दों में वे उन यहूदियों की सहायता करने वाले प्रत्येक जन से बैर रखते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो यहूदियों से नफरत करते हैं, परंतु नहीं जानते कि क्यों। जो यहूदियों से प्रेम करते हैं उनसे भी, और जो उनकी सहायता करना चाहें उनसे भी नफरत करते हैं। इस सप्ताह सॉल्ट लेक सिटी में कुछ फिलिस्तीनियों पलिस्तियों से हमारा सामना हुआ। वहां फ्यूचर सर्वाइवल नामक फिल्म रविवार रात को दिखाई गई थी। फिल्म देखकर वे गुस्से और विरोध से भर गए, क्योंकि उसमें कहा गया था कि यहूदियों को इसराइल लौट लाने में परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने कहा है कि वो उनको उनके देश में लौटा लाएगा। इस बात पर वे गुस्से से भर गए और वहां हंगामा खड़ा हो गया और बड़ा विरोध हुआ। ये फिलिस्तीनी इस फिल्म को देखकर अप्रसन्न थे कि इसराइल के पक्ष में वो फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म ने इसराइल को बाइबल के इतिहास के अनुसार एक स्थान प्रदान कर दिया है। वे बड़े विचलित हो गए। बहुत से लोग हैं जो यहूदियों से नफरत करते हैं, जिनमें संबलत और तोबिया भी थे, क्योंकि नहमाया ने यहूदियों की सहायता करनी चाही, इसलिए वे उसके आने से बहुत अप्रसन्न थे। इस प्रकार नहमिया यरूशलेम में आया और 3 दिन तक उनसे भेंट करता रहा। उसने उन पर ये प्रकट नहीं किया कि उसके आने का प्रयोजन क्या था। जब 3 दिन के बाद एक रात जब सब विश्राम कर रहे थे, किसी को कुछ बताए बिना वो अपने साथ फारस से आए हुए कुछ लोगों को लेकर शहरपना और उसके द्वार का निरीक्षण करने निकल पड़ा। वो घोड़े पर सवार था, परंतु अन्य लोग पैदल चलते थे। वे चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मलवा बहुत अधिक था, जिसके कारण वो वहां नहीं जा रहे थे। इस कारण वे शहर में लौट आए और शहर में किसी को खबर न होने दी कि वे मध्य रात्रि कहां थे। अगले दिन नहमया ने अगुओं को एकत्रित किया और उनके साथ शहर के पुनर्निर्माण की योजना की चर्चा की। इस योजना के अनुसार शहरपना के निर्माण में सबको सहभागी होना था, अर्थात प्रत्येक कुटुंब को शहरपना का एक भाग दिया गया कि वो उसका निर्माण करें। इस प्रकार याजकों को भेंट द्वार से अपना काम आरंभ करना था। इसके बाद को विभिन्न परिवारों को एक एक द्वार दिया गया था कि वे उसे बनाएं। यहां 10 द्वारों की सूची दी गई है, परंतु उससे आगे एप्रेम के द्वार का तथा एक और द्वार का उल्लेख है। इसका अर्थ ये हुआ कुल 12 द्वार है। इस प्रकार विभिन्न परिवारों को विभिन्न द्वार और शहरपना के विभिन्न भाग दिए गए।